نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أراهيكم مختوم. اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد تو بالکل کسی قسم کی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کیسے تھے. لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا کہ سیرت میں چونکہ واقعاتی رنگ غالب ہوتا ہے تو لوگ اس میں سے پھر عمل والی چیزیں کم نوٹ کر پاتے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آپ سے متاثر ہو کر آپ جیسے وہ کام کریں کہ جس کے بعد ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے وہی ملے جو کہ آپ کو ملا. تو لہٰذا ہم اس میں آج بالکل اس کے آخر کے ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں، اور اللہ کے لیے بہت ہی بڑی شکر گزاری ہے دل میں کہ اس نے ہمیں اس کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو آئیے دیکھتے ہیں، اگر آپ بک کو فالو کریں گے تو بک کا پیج نمبر 644 ہے. اخلاق و اوصاف. تھوڑا سا میں اپنی پروناؤنسیشن کو بھی صحیح کرنا ہے کیونکہ اردو پڑھتے پڑھتے ہم نے اردو اور عربی کو مکس کر دیا. اخلاق کہتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، اخلاق نہیں، اخلاق. افعال کا وزن ہوتا ہے خلق سے. اخلاق پرانا ہونا، کوئی بھی چیز جتنی پرانی ہوتی ہے وہ اتنی یوز ٹو کر دیتی ہے بندے کو اس چیز کا. تو اخلاق وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو پوس نہیں دینا پڑتا، بلکہ وہ چیز اتنی اس بندے کے ساتھ چل چل کے پرانی ہو چکی ہے کہ بلا تکلف بلا مبالغہ وہ وہی کام کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی آرٹیفیشلی امپوز کرنے کی چیزوں کو ضرورت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق، فرق کیا ہے؟ جمال خوبصورتی، بیوٹی، خلقی یعنی آپ کی شکل بڑی خوبصورت تھی. آپ کا چہرہ جس کو آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، بہت سارے اشعار آپ کے ذہن میں آ جائیں گے نعتوں میں سنے ہوئے، وہ سب ٹھیک ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی دیا تھا. اور اسی طرح کمال خلق، کمال کا بھی اخلاق تھا، یعنی اخلاق کے کمال پر تھے. اور کمال کہتے ہیں کوئی چیز بالکل اوپر کے درجے پہ پہنچ جائے، یعنی اس کے بعد پھر پیچھے اور کچھ نہیں رہتا، جو احاطہ بیان سے باہر ہے، یعنی جس کو ہم اپنے لفظوں میں سمیٹ نہیں سکتے. اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے. چنانچہ آپ کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فداکاری اور جانثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا یعنی رفیق، دوست، کمپینینز اور ہم نشین یعنی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ رفتگی کی حد تک آپ سے محبت کرتے تھے. وہ رفتگی کیا ہوتی ہے؟ جیسے بندہ بے خود ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول، لیکن ان کو بہت کنٹرول تھا. مرا یہ کہ بہت ہی پیار کرتے تھے. انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خراش تک آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں. اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ کو عطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا. ہم عاجزی اور بے مائیگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ کے جمال اور کمال سے ہے. یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں بات کرنا بھی اتنا ہی انسان کے لیے مشکل ہے جیسے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں انسان بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے. حالانکہ فرق تو بہت بڑا ہے، اللہ کی ہستی کو تو کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ نے ایک ایسی کشش ڈالی تھی کہ جو آپ کے پاس آتا کھنچتا آتا لیکن آپ کی طرف نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا. تو گویا کہ ہم پڑھنے لگے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ مبارک یعنی آپ کا خلق، اور پھر اس کے بعد آپ کا خلق پڑھیں گے. حلیہ مبارک کیسا تھا؟ یعنی آپ کا حال، آپ کے فیچرز، آپ کی فزیک، آپ کا پوسچر کیسا تھا؟ آپ دیکھیے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے ذرا سا خود کو احساس دلائیں. آج ہم کتنی محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال حلیے کی بات کرتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ تو دیکھتے تھے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو وہ نعمت دے دیتا ہے जिसके लिए दूसरे तरसते हैं। अमूमन लोगों की कैफियत क्या होती है? ऐसी कैफियत और ऐसी नेमतों को अपने लिए बल्कि बोझ समझने लगते हैं, इसकी कदर नहीं करते हैं। और हम बहुत कुछ मांगते हैं अल्लाह से, लेकिन फिर जब मिल जाता है ना, तो हम उसका हक नहीं अदा कर पाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों के साथ जोड़ा था, और आपके साथ क्या खूबसूरत तरीके से ये चीज़ें लगी हुई थी, तो इसका अंदाज़ा तो आप मैं नहीं कर सकते, लेकिन सहाबा की खुशकिस्मती पर रश्क ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ने आपको कैसे इन सारी चीज़ों में बना के रखा, और आपका वो खूबसूरत सा हाल हुलिया कमाल तो अल्लाह ही का था, लेकिन दिया किसको, ये भी तो सोचने की बात है ना। तो अल्लाह अपने प्यारे नबी को कैसे बनाता है, आइए ज़रा थोड़ा सा इस सोच के साथ पढ़ें और दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह, दुनिया में तो हमारी आंखों ने नबी को नहीं देखा, लेकिन जन्नत में हमें महरूम ना करना, हमें उन लोगों में से करना कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत महसूस कर सकें। जन्नत में अल्लाह सुबहाना ताला ने जो भी आपका मुकाम रखा है, आपके साथ अल्लाह ताला का जो मामला है वो बड़ा ही खूबसूरत है। तो जन्नत अल्लाह अपने नबी को देगा इंशाल्लाह। हमें भी जन्नत अगर मिलती है और अल्लाह से उम्मीद है और लेनी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह ताला जन्नत से कमतर किसी चीज़ पे मैं राज़ी नहीं होंगी, तो फिर दीदार ज़रूर करवाना। ऐसा ना हो कि हम दुनिया में भी पीछे रहे तो बात में भी हम पीछे ही रहें। एक खातून थी, उम्मे माबद उनका नाम था, कबीला खुजाया से थी, तो उन्हीं की रिवायत चलती आती है। देखिएगा, ये शान भी अल्लाह ने एक औरत को दी। बहुत सारे लोगों ने नबी के चेहरे के बारे में बहुत कुछ कहा, और बल्कि मुबालगा भी किया। याद रखिए कि नबी के शमाइल और आपका हाल हुलिया, इसको बताते हुए भी हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, वो कैफियत जो हदीस की कलेक्शन में या कुरान की आयतों में अगर वो ना भी को रख सके, लेकिन झूठ तो नहीं कह सकते ना। तो हिजरत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद खुजाया के खेमे से गुजरे, तो इसने आपकी रवानगी के बाद अपने शौहर से आपके हुलिया मुबारक का जो नक्शा खींचा वो ये था। क्या कहती हैं? चमकता रंग, ताबनाक चेहरा, खूबसूरत साख्त, ना तोंदलेपन का ऐप, यानी पेट बाहर निकला हुआ नहीं था, जिसको तोंद निकला हुआ कहते हैं हम लोग, पेट का निकलना बाहर, ना गंजेपन की खामी, यानी ऐसा भी नहीं था कि सर पे से बाल उतरे हों, बाल ना हों, जमाल जहां ताब के साथ ढला हुआ पैकर, यानी जिस्म ऐसा था कि जिसमें खूबसूरती, आप देखिए बहुत लंबा कद भी अच्छा नहीं होता और बहुत छोटा भी अच्छा नहीं होता, बहुत दुबला पतला बंदा भी अच्छा नहीं लगता और बहुत मोटा भी अच्छा नहीं लगता, तो बड़ा ही खूबसूरत सा अंदाज, यानी जमाल जहां ताब के साथ, यानी जिसकी कोई ताब ला सके, ये कह लीजिए, सुरमगी आंखें, यानी कुदरती तौर पे आपकी आंखों के अंदर ऐसे लगता था सुरमा लगा हुआ है, लंबी पलकें, भारी आवाज, लंबी गर्दन, सफेदो स्याह आंखें, स्याह सुरमगी पलकें, बारीक और बाहम मिले हुए अबरू, आईब्रोज, चमकदार काले बाल, खामोश हों तो बावकार, गुफ्तगू करें तो पुरकशिश, दूर से देखने में सबसे ताबनाक और पुरजमाल, करीब से सबसे खूबसूरत और शीरी, गुफ्तगू में चाशनी, बात वाज़ेह और दो टोक, ना मुख्तसिर ना फजूल, अंदाज ऐसा कि गोया लड़ी से मोती झड़ रहे हैं, दरमियाना कद, ना नाटा के निगाह में ना जचे, ना लंबा के ना गवार लगे, दो शाखों के दरमियान ऐसी शाख की तरह हैं जो सबसे ज़्यादा ताज़ा और खुश मंज़र है, रुफ़का यानी साथी आपके गिर्द हलका बनाए हुए कुछ फरमाएं तो तवज्जो से सुनते हैं, कोई हुक्म दें तो लपक कर बजा लाते हैं, मुता यानी वो शख्स जिसकी इताअत की जाए, लोग उनकी बातें भी माने, मुकर्रम जिसका कराम किया जाए, इज्जत की जाए, ना तुरशरू यानी ऐसी बातें नहीं करते जिसको खट्टी बातें कहे, खरी खरी नहीं सुनाते थे, चेहरे पे ना गुबारी नहीं थी और ना लख बातें करते थे। आप ज़रा सा, ये तो उर्दू में पढ़ा ना आपने, कभी इनका अरबी में तो पढ़ कर देखिए, और मैं सोचती हूँ, बल्कि इस पे बहुत बात करते हैं उलमाए कराम भी, कि अरब की आम औरत भी अदब के आला मुकाम पे थी, यानी ये अरबी में पूरा मिलता है, आप खोलकर देखिए। और मैं इसको पढ़ते हुए महसूस कर रही थी कि क्या खूबसूरत पेकर होगा, और जब हम जन्नत में अपने प्यारे नबी को देखेंगे तो हमारे दिल की क्या कैफियत होगी। याद रखिए कि जितना मर्जी इंसान बाखलाक हो, बाकिरदार हो, हमें से प्यारा, लेकिन ज़ाहरी फिजिक, ज़ाहरी हालुलिया ट्रैक करता है, मानिए ना मानिए। बच्चे से माँ को प्यार तो है ही है, लेकिन बच्चे का हुसन, बच्चे का महजब दिखना, बच्चे का ज़ाहरी हालुलिया अच्छा, इससे माँ का दिल और खिलता है। सेम यही हर रिश्ते में, शोहर बीवी का रिश्ता, चाहे वो अंतुम लिबासुल्लाहुन का रिश्ता है, लेकिन ज़ाहिर का फ़र्क तो पड़ता है। अल्लाह ने इंसान के अंदर ये हिस रखी है, परिंदों और जानवरों में तो ये हिस नहीं है। तो अल्लाह के नबी जब किसी महफिल में बैठे होते होंगे तो क्या खूबसूरत मंजर होता होगा। आप देखिए कि इसे एक छोटी सी बात नोट कीजिए कि दीन के साथ अगर आपका अल्लाह ने नाम जोड़ दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बेहंगम लगें। शक्लें तो हम सबकी अच्छी हैं, कौन कहता है उसकी शक्ल नहीं अच्छी, लेकिन हमें अपना हाल हुलिया, हमें अपना गेटअप, हमें अपना ज़ाहरी मामला भी खूबसूरत रखना चाहिए, ताकि दीन को भी तो लोग इज्जत से देखें। आज दुनियावी तौर पे लोग कितने टिशन मिशन रहते हैं, तो दीन के नाम पे हम केयरलेस, हमारे ऊपर हवाइयाँ उड़ रही हों, हम केयरलेस लगे, अगली लगे, ये तो दीन नहीं है। और अभी आप पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी क्या खूबसूरत एहतमाम करते थे हर चीज़ में अपने आप को अपडेटेड रखने का। तो ये तो थी एक खातून की नज़र, आइए ज़रा एक मर्द की नज़र से सुनते हैं अल्लाह के नबी कैसे थे। और बयान करने वाले कोई और नहीं, कोई बाहर के नहीं, घर का बंदा अली रज़ी अल्लाह अन्हु। आपका वसफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं, आप ना लंबे तड़ंगे थे, ना नाटे खोटे, यानी ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, लोगों के हिसाब से दरमियाने कद के थे, बाल ना ज़्यादा घुंघरियाले थे करली, ना बिल्कुल खड़े खड़े, बल्कि दोनों के बीच बीच की कैफियत थी। रुखसार ना बहुत ज़्यादा पुरगोश था, यानी बहुत मोटा मोटा गोल मटोल मुंह भी नहीं था, ना थोड़ी छोटी, और पेशानी पस्त, चेहरा किसी कदर गोलाई लिए हुए था, यानी ऑलमोस्ट राउंड फेस था आपका, रंग गोरा, आंखें सुर्खी माइल, पलकें लंबी, जोड़ों और मोंढों की हड्डियां बड़ी बड़ी, यानी चौड़ा सीना था आपका, सीने पर नाव तक बालों की हल्की सी लकीर, बकिया जिस्म बाल से खाली, हाथ और पाँव की उंगलियां पुरगोश्त, यानी गुदले गुदले हाथ कह लीजिए, हाथ और पाँव की, चलते तो कदरे झटके से पाँव उठाते, और यूं चलते गोया किसी ढहलवान पर चल रहे हो। अपने हाथ को ऐसे टेढ़ा करके देखें ना तो खुल जाता है, यानी कंधे पिचके हुए नहीं थे, स्ट्रेट शोल्डर्स, लेकिन सीना बाहर निकला हुआ। जब किसी तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरे वजूद के साथ मुतवज्जे होते हैं। ये क्या मतलब है? यानी आप रिवॉल्विंग चेयर पे किसी को तस्वर में लाएं, कोई आवाज़ दे तो वो सिर्फ मुंह खूं घुमा दे या पूरी कुर्सी घुमा के उधर जाए, तो अल्लाह के नबी सिर्फ चेहरा नहीं पूरा जिस्म घुमा कर उसके बिल्कुल सामने मुकर के फिर बात करते थे। और हर सुनने वाले और हर बात करने वाले को यही अच्छा लगता है कि जिससे मैं बात करूं वो पूरी तवज्जो दे, यानी आप लोगों को तवज्जो देते थे, अहमियत देते थे। दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी, ये ख़ास चीज़ थी जो अल्लाह ने आपके बैक साइड पे दोनों शोल्डर्स के बिटवीन में रखी हुई थी। आप सारे अम्बिया के खातिम थे, खातिम कौन होता है? मोहरबंद, यानी आखिरी नबी थे। एक होती है सील और एक होती है स्टैम्प, यहाँ मुराद सील है, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा सखी दस्त और सबसे बढ़कर जरूरतमंद, जिसको आप कह सकते हैं कि रिस्क टेकर थे। सबसे ज़्यादा सादिकुल लहजा, लहजा बड़ा सच्चा था। और ये कौन सा लहजा होता है? लहजा समझे ना, एक्सेंट, बात करना, सच्ची बात करते थे। और सबसे बढ़कर अहदो पैमान के पाबंदे वफा, सबसे ज़्यादा नरम तबीयत और सबसे शरीफ साथी, जो आपको अचानक देखता हैबत ज़दा हो जाता, यानी अचानक देखने से मेरा ये कि कभी कभार या दूर से देखता तो घबरा जाता, जो जान पहचान के साथ मिलता महबूब रखता, यानी जितना कोई आपके करीब होता उतनी आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगता। आपका वसफ़ बयान करने वाला यही कह सकता है कि मैंने आपसे पहले और आपके बाद आप जैसा नहीं देखा। है किसी माँ का बच्चा ऐसा आज के जिसमें ये सारी खूबियां हो। आप देखिए कि इससे पता चलता है कि अल्लाह ने जैसे आसमान खूबसूरत बनाया ना, आप आसमान को देखते ना आप कहते हैं बस ऐसे ही होना चाहिए था। सूरज, चांद, सितारे, बहार, खिजां, समंदर, कायनात की एक एक चीज़ जो अल्लाह का मास्टर पीस है उसको आप देखते हैं ना तो आपके दिल में आता है एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। हल तरा मिन फुतूर, अल्लाह कहते नहीं, एक बार नहीं दो बार निगाह झुका लो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पूरे आसमान में कहीं शगाफ नहीं है। इसी तरह नबी अल्लाह के भेजे हुए रसूल में भी कोई झोल नहीं है, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत में भी कोई झोल नहीं है। जैसे कुरान एवर न्यू है ना, ऐसी कायनात एवर न्यू है। तो नबी के अंदर वसफ इतने जमा करने से मुराद क्या है, आप ज़रा इस पे समझिएगा। दीन की इज्जत, जब आप दीन का तारुफ बन जाते हैं ना तो आपका हर अमल लोगों को या तो दीन के करीब करता है या दीन के दूर करता है। अगर नबी के अंदर कोई झोल हो, कोई ढीलापन हो, कोई कमी हो ना, तो ये दीन के नाम पे जाता है। इससे पता चलता है कि जब आपकी पहचान दीन हो जाए तो हत्तुल बसा हर चीज़ तो इंसान के बस में भी नहीं है, लेकिन वट एवर पॉसिबल वी कैन डू इट, वी शुड डू इट। दीन को हमेशा बाइज्जत बनाएं और एक दुआ किया करें कि अल्लाह मेरी वजह से दीन की इज्जत हो और दीन की वजह से मेरी इज्जत हो, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत बने। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की एक रिवायत में है कि आपका सर बड़ा था। हमारे पंजाबी जबान में क्या कहते हैं, वड्डे सिर सरदारा दे। जोड़ों की हड्डियां भारी भारी थी, जोड़ क्या होते हैं, जॉइंट्स। सीने पर बालों की लंबी लकीर थी, जब आप चलते तो कदरे झुक कर चलते, गोया किसी डहलवान से उतरे हैं। हजरत जाबिर बिन समूरा का बयान है कि आपका धाना, धाना क्या होता है, माउथ, यानी जैसे होंठों की चौड़ाई कह लें, आपका धाना कुशादा था, वाइट था, आंखें हल्की सुर्खी लिए हुए और एड़ियां बारीक। अबू तुफैल रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप गोरे रंग, पुर मुलाहत चेहरे, मुलाहत क्या होती है आपको पता, नमकीन, यानी अट्रैक्शन। कभी गोरे होते हैं लोग फिर भी कशिश नहीं होती, फीके लगते हैं, और कई कालों के और स्याह पे और गंदमियों पे भी बड़ी कशिश है, तो नमकियत थी आपके चेहरे पे, और मियाना कदो कामत के थे, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि आपकी हथेलियाँ कुशादा थी और रंग चमकदार, ना खालिस सफ़ैद ना गंदम गु यानी वीटिश। वफात के वक्त तक सर और चेहरे के 20 बाल भी सफ़ैद ना हुए थे। कितनी उम्र थी आपकी माशाल्लाह, 63, और सर के और चेहरे के बाल में सर और दाढ़ी सिर्फ 20 बाल टोटल, दोनों के मिला लें 10 सर के 10 चेहरे के सफ़ैद नहीं थे, सब काले थे। सिर्फ कनपट्टी के बालों में कुछ सफ़ेदी थी, कनपट्टी के कानों से आगे की जगह, और चंद बाल सर के सफ़ेद थे। आज तो मेरे अले 30-35 के बाद ही बाल वाइट होने लग जाते हैं। हज़रत अबू जो हैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने आपके होंठ के नीचे अनफका आइन नून फाका दाढ़ी बच्चा में सफ़ेदी देखी। ये क्या होती है, अगर आप देखें तो मर्दों की चिन और होंठों के बीच में एक छोटी सी जगह पे बाल होते हैं ना, बिल्कुल मिडल में, उसको अनफका कहते हैं। जो पूरी गर्दन होती है ना नीचे, उसको उनक कहते हैं। ये उनक के बीच में फा लगा लीजिए। आप देखिए कि सहाबा कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो देखते थे, और ये सामने से नहीं देखते थे, साइड से देखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर का बयान है कि आपके अनफका यानी दाढ़ी बच्चे में चंद बाल सफ़ेद थे। हज़रत बरा का बयान है कि आपका पैकर दरमियानी था, दोनों कंधों के दरमियान दूरी थी, बाल दोनों कानों की लो तक पहुंचे हुए थे, यानी लंबे बाल थे पीछे से आपके। मैंने आपको सुर्ख जोड़ा जेब तन किए हुए देखा, कभी कोई चीज़ आपसे ज़्यादा खूबसूरत ना देखी। आप देखिए इतना गोरा चिट्टा काले बालों वाला शख्स हो और कपड़े भी फिर सुर्ख रंग के पहनने हो, तो क्या हुसन होगा उस पे। पहले आप अहले किताब की मुवाफ़क़त पसंद करते थे, इसलिए बाल में कंघी करते तो मांगना निकालते, लेकिन बाद में मांग निकाला करते थे। जी, आपने बाल बनाने में भी अहले किताब की सिमिलेशन को कबूल नहीं किया, पसंद नहीं किया। मक्का में अगर था तो मदीना में आके छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ ज्यूस का ये अमल था। हज़रत बरा कहते हैं कि आपका चेहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और आपके अखलाक सबसे बेहतर थे। इनसे पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार जैसा था, यानी लंबा पतला? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि चांद जैसा था। और एक रिवायत में कि आपका चेहरा गोल था। रबी बिनते मुआविज़ कहती हैं कि अगर तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो लगता कि तुमने तुलू होते हुए सूरज को देखा है। कैसा लगता है सनराइज? हज़रत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह अन्हो का बयान है कि मैंने एक बार चांदनी रात में आपको देखा, आप पर सुर्ख जोड़ा था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और चांद को देखता, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आप चांद से ज़्यादा खूबसूरत हैं। और याद रखिए, ये मुबालगा नहीं था, ये हकीकत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं देखी। लगता था सूरज आपके चेहरे में रवान दवा है, यानी शाइनी फेस था। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को तेज़ रफ्तार नहीं देखा। तेज़ चलते थे आप, और अक्सर मर्द तेज़ी चलते हैं। लगता था ज़मीन आपके लिए लपेटी जा रही है। हम तो अपने आप को थका मारते थे और आप बिल्कुल बेफिक्र। इसको हाईलाइट कीजिए, बड़ी अहम बात है। हमारे जहन में आता है कि इंसान जितना मसरूफ़ हो जाए और जितना मशहूर हो जाए और जितने ज़्यादा उसके कंधों पे जिम्मेदारियां डल जाएं, वो उतना ही थका थका घबराया मसरूफ़, वक्त नहीं है, बात नहीं करनी, खाना नहीं खाना, किसी को मिलना नहीं, क्योंकि मसरूफ़ बहुत है और फिक्रें। ज़ाहिर है, ये तो सीधी सी बात है कि आपके पास जितने प्रोजेक्ट्स होंगे उतने आपको मसले तो ज़्यादा ही होंगे। और हर बच्चे को एक प्रोजेक्ट बनाइए, जिसकी 6 बेटियां हैं तो ज़रूर किसी एक बेटी के घर में कुछ हो ही रहा होगा, कहीं खुशी कहीं गम, कभी सेहत कभी बीमारी। और जिनकी है ही एक, तो बस एक या गम में या खुशी है ना। लेकिन मोमिन बेफिक्र, जो होगा देखिए, 6 बेटियां के 10 बेटियां भी हैं, जो होगा देखी जाएगी। हाँ, इनके रिश्ते कैसे होंगे, जिधर अल्लाह ने करने हैं कर देगा। तो अपने अंदर ये बेनियाजी डालिए, बेफिक्रे रहे। जब आपसे कोई मिले उसको लगे आपसे ज़्यादा बेफिक्री कोई नहीं, आपसे ज़्यादा फारिगी कोई नहीं, आपसे ज़्यादा रिलैक्स ही कोई नहीं, आपको तो कोई मसला ही नहीं है, आप तो बहुत ही चिल मूड में रहते हैं। और आपको था कि ये कैफियत कब आती है? जब आप अपने सारे मामले उस हस्ती के हाथ में दे देते हैं जिसको चीज़ें सौंपने के बाद ज़ाया नहीं होती। ला तुदियु वदाया, जब सफ़र पे जाते हैं और आप फिर जो जाता है या जिसको भेजा जाता है क्या कहते हैं, इस तौद अल्लाह अल्लज़ी ला तुदियु वदायुहु, मैं अपना सब कुछ उसके हवाले करता हूँ जिसको सौंप कर चीज़ें ज़ाया नहीं होती। और कौन बेफिक्र रहता है जो कहता है हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ए अल्लाह पकड़ सारे कामों के पटारे। कभी कहता है हसबुनल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह तू ही मुझे काफ़ी है। और कभी कहता है रदीतु बिल्लाहि रब्बन। याद रखिए, ये फ़िक्रमंदी और बेफिक्री का डायरेक्ट ताल्लुक ईमान से है। जब आप अल्लाह को सब कुछ समझते हैं ना, तो आप बेफिक्र होते हैं। और अगर आप अल्लाह को काफ़ी कुछ समझने के साथ कुछ खुद को भी समझते हैं ना, तो सारा कुछ होने के बावजूद गम फिक्र बड़े होते हैं आपको। हज़रत काब बिन मालिक का बयान है कि जब आप खुश होते तो चेहरा दमक उठता, वह चांद का एक टुकड़ा है। अच्छा, इससे पता चलता है कि बंदा अगर खुश हो ना तो उसकी आंखें भी चमकें और एक बच्चों वाला एक मासूम सा हुसन चेहरे पे दिखना चाहिए, रिलैक्स्ड। एक बार आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ फरमा थे, पसीना आया तो चेहरे की धारियां चमक उठी। धारियां क्या होती हैं? अमूमन पसीना एक ख़ास रो में गिरता है ना, जैसे कितार दर कितार वाली कैफियत। ये कैफियत देकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू कबीर हज़ली का ये शेर पढ़ा। अरब का बड़ा ही मारूफ और मशहूर शायर था। तो शेर क्या था? कहती हैं कि वाइज़ा नज़र तु इला अस्सर्रति वजहु बिरक़ती बि बरक़िल आरदिल मुतहल्लल, जब इनके चेहरे की धारियां देखो तो वो यूं चमकती हैं जैसे रोशन बादल चमक रहा हो। ये तो थी सिद्दीक़ा। अब ज़रा सिद्दीक़ का शेर भी सुन लीजिए। अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के नबी के बारे में क्या कहते हैं? कहते थे कि अमीन उन मुस्तफ़ा बिल खैरी यदऊ कदौ इल बद्री ज़ा इलहि ज़ल्लाम, आप अमीन हैं चुनीदा यानी चोजन मुस्तफ़ा, बरगजीदा हैं बिल खैरी यदू खैर की दावत देते हैं, कदौ इल बद्री जैसे चौदहवीं के चांद की रोशनी कामिल चांद था। ज़ाइलहु ज़ल्लाम, जिससे तारीकी आँख मिचोली खेल रही है। यानी कभी चौदहवीं का चांद बादलों में छुप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, बादल हटते हैं तो ऐसे रोशनी होती है ना। इस कैफियत को अल्लाह के नबी से जोड़ा। और हज़रत उमर जुहैर का एक शेर पढ़ते थे, ये भी शायर वही जिसका ऊपर जिक्र हुआ है। तो जुहैर का एक शेर हरम बिन सनान के बारे में था, लेकिन हज़रत उमर इसको अल्लाह के नबी के लिए कहते थे, लव कुंत मिन शैयन सवीयुल बशर, अगर आप बशर के सिवा किसी और चीज़ से होते तो आप ही चौदहवीं की रात को रोशन करते। कुंत अलमुदिया लैलतिल बद्री, यानी आप इंसान ना होते तो फिर चौदहवीं का चांद जो था ना वो आप होते। फिर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे, जब आप गज़बनाक होते तो चेहरा सुर्ख हो जाता, दोनों रुखसारों में दाने इनार निचोड़ दिया गया है। क्या कहते हैं इनार को? रोमान, अनार की तरह। कितना सुर्ख होता है अनार। अल्लाह अकबर। हज़रत जाबर बिन समूरा का बयान है कि आपकी पिंडलियाँ कदरे पतली थी। पिंडलियाँ क्या होती हैं? पाँव से घुटने तक, इसको देख लीजिएगा, यानी टांग का नीचे का हिस्सा, कदरे पतली थी। और आप हंसते तो सिर्फ तबस्सुम फरमाते, आंखें सुरमगीं थीं, तुम देखते तो कहते कि आपने आंखों में सुरमा लगा रखा है, हालांकि सुरमा न लगा होता। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, आपके आगे के दोनों दांत अलग अलग थे, यानी उनमें गैप था। जब आप गुफ्तगू फरमाते तो इन दांतों के दरमियान से नूर जैसा निकलता दिखाई देता। आज भी आप देखिए कि अक्सर लोगों के सामने के जो दो दांत हैं ना वो खुले होते हैं, और हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसके दांतों में गैप होता है ना वो बड़े खुले दिल वाला होता है। ऐसी बातें हैं बनी हुई, आई थिंक सो, कि वो बड़ा खुले दिल का बंदा होता है। इस तरह कभी कहते हैं हाथ सीधा करो, कर लें जी, तो आपकी उंगलियों के बीच में गैप होना तो कहते हैं खुले हाथ वाला है, बड़ा खुला दिल है इसका। और इसी तरह अपोजिट भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी की जो बातें थी वो तो जो थी सो थी। गर्दन कैसी थी? गर्दन गोया चांदी की सफाई लिए हुए गुड़िया की गर्दन थी। पलकें तवील, दाढ़ी घनी, पेशानी कुशादा, अबरू पेवस्ता जुड़े हुए और एक दूसरे से अलग, नाक ऊंची, रुखसार हल्के, लब्बे से लब्बा से नाफ तक छड़ी की तरह दौड़ा हुआ बाल, यानी अपर बॉटम कह लीजिए, और नाफ तो पेट तक आपको पता ही ये जगह होती है। और इसके सिवा शिकम और सीने पर कहीं बाल नहीं, अलबत्ता बाजू और मोंढों शोल्डर्स पर बाल थे। शिकम और सीना बराबर, सीना मुसत्तह बराबर चौड़ा, जैसे सतह का लफ्ज़ है ना मुसत्तह, और कुशादा यानी वाइड था आपका चेस्ट। कलाइयाँ बड़ी बड़ी, हथेलियाँ कुशादा, कद खड़ा, तलवे खाली, यानी ये जो पाँव के तलवे होते हैं ना ये खाली था, गैप था नीचे। आज़ा बड़े बड़े, जब चलते तो झटके के साथ चलते, कदरे झुकाव के साथ आगे बढ़ते और सहल रफ्तार से चलते। यानी सहल रफ्तार मीन इजी गोइंग, आराम से, इतना के मतलब अच्छी रफ्तार होती। हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कोई हरीर और दीबा, रेशम सिल्क, ऐसा नहीं छुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज़्यादा नरम हो, और न कभी कोई अंबर या मुश्क या कोई ऐसी खुशबू सूंघी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से बेहतर हो। हज़रत अबू जुहैफा रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने आपका हाथ अपने चेहरे पर रखा तो वो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार था। हज़रत जाबिर बिन समूरा जो बच्चे थे कहते हैं, आपने मेरे रुखसार पर हाथ फेरा तो मैंने आपके हाथ में ऐसी ठंडक और ऐसी खुशबू महसूस की गोया आपने इसे इतार की इतरदान से निकाला। इतार किसको कहते हैं? इतर बेचने वाले को, यानी खुशबू थी आप में। हज़रत अनस का बयान है कि आपका पसीना गोया के मोती होता था, और उम्मे सुलैम कहती हैं कि ये पसीना ही सबसे उम्दा खुशबू हुआ करती थी। हज़रत जाबिर कहते हैं कि आप किसी रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और आपके बाद कोई और गुजरता तो आपके जिस्म या पसीने की खुशबू की वजह से जान लेता कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं, यानी आपके पास नेचुरल फ्रेग्रेंस थी। आज भी जो लोग बहुत इतर या परफ्यूम लगाते हैं ना, तो जब वो किसी जगह से गुजर जाते हैं तो उसके बाद वो खुशबू मौजूद रहती है ना, तो अल्लाह के नबी को कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ये खुशबू का तोहफा दिया था। क्या आपको अल्लाह ताला इस तरीके से लोगों के लिए एक खुशगवार किस्म की हस्ती बना के पेश करता था? आप देखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें नबी सल्लम के अपने इख्तियार में नहीं थी, आपके मेरे भी इख्तियार में कुछ नहीं है ना, लेकिन जब भी कोई बात आप और मैं पढ़ते हैं नबी की, तो बस उसको आप इस एंगल से पढ़ा करें और सुना करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी तरफ से एक ख़ास किरदार दिया, अच्छे से अच्छा, खूबसूरत और खूबसूरत से खूबसूरत तर। ऐसा आपका अंदाज़ था कि जिसमें से दूसरे लोग ज़रूर मुतासिर होते थे। आपके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी जो कबूतर के अंडे जैसी और जिस्म मुबारक ही के मुशाबिह थी। ये बाएं कंधे की कर्री यानी नरम हड्डी के पास थी। अगर आप शोल्डर्स को इधर गर्दन के नीचे हाथ लगाएं ना, तो एक सॉफ्ट कुरकुरी सी हड्डी होती है, इस जगह पे थी ये। इस पर मस्सों की तरह तिलों का झमघट था, यानी अल्लाह ने आपको ये एक साइन दिया था। और कुछ अहले किताब जो पिछली किताबों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक पढ़ चुके थे, तो उन्होंने अल्लाह के नबी को फिर इन्हीं निशानियों से पहचाना था। अब आपके ये सारा सुनने से क्या महसूस हुआ? जाहिरी बात है कि मोहब्बत दो चंद हो गई, मिलने को दिल कर रहा है, आपको देखने को दिल करता है। और आप देखिए कि दुनिया में अल्लाह की इस कायनात में इतनी खूबसूरत जगह है ना, आप सुनते हैं तो आपका दिल करता है मैं देखूं। मसलन नियाग्रा फॉल, जिसने नहीं देखी ज़रूर वो सुन सुन के चाहेगा कि मैं भी देखूँ ना। इसी तरह अगर किसी इंसान की खूबी और खूबसूरती का तذकरा हो तो दिल करता है ना उसको भी देखने को। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे आज इसके इस पढ़ने और इसके बारे में बात करने को कबूल कर ले और हमें नबी के दीदार से महरूम ना करना। ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाकर भी आपको ना मिलें। और वो सारी हदीसें जहन में ले आइए कि सारे ही जन्नत में दाखिल होंगे मगर वो जिसने खुद इनकार किया। मन असा, तो साहबा ने कहा कौन है ऐसा जो खुद ना जाए जन्नत में, वो कौन है जो इनकार करे? तो फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को पीछे किया, जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने इनकार किया खुद जन्नत में जाने से। और आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके मेरे लिए गौर तलब है और आपको मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा लेना है। और इन सारी चीज़ों को पढ़ते और सुनते वक्त आप और मैं अगर इस चीज़ को अपने अमल में लाना चाहते हैं, क्योंकि बातें तो हमने पढ़ ली हैं, मोहब्बत तो दो चंद हो ही रही है इससे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को पढ़कर अपना एक मेयार भी तो बनाइए ना। क्या खूबसूरत किरदार था, इसको सुनने के बाद आपके जहन में आ रही है तो उसको लीजिए, और फिर अपने लिए अमल की बातों में ये भी लीजिए कि हम तो ख़वातीन हैं ना, हम अपनी खूबसूरती को जाहिर तो नहीं कर सकते लेकिन हम साफ़ सुथरे तो रह सकते हैं ना। अपने घर वालों के लिए हम एक खुशी का सामान तो बन सकते हैं ना। और इसी तरह से आप देखिए कि इसमें हर चीज़ सिर्फ शक्लो सूरत की नहीं है, पर्सनैलिटी की। तो अपनी पर्सनैलिटी को देखना है। कभी मैं दीन के लिए जाऊँ तो लोग मुझे देखकर क्या सोचते होंगे? छिछोरपन, ऊंची ऊंची बोलना, क्योंकि आपने देखा कि इसमें आपकी कुछ आदत भी थी, चलना फिरना बोलना, और जो पर्सनैलिटी होती है ना इन सब चीज़ों से मिलके बनती है। पर्सनैलिटी के लिए वो जैसे बच्चों का पजल होता है ना, छोटे छोटे टुकड़े जोड़े तो फिर पूरा होता है। तो इन चीज़ों को सामने रखिए कि मैंने अपने चलने, अपने बात करने, अपने खाने, अपने लेटने बैठने से दिखाना है कि मैं नबी की उम्मती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे सेशन में से पॉइंट्स नोट कर लीजिए और उसको वन बाय वन अपने लिए चेक कीजिए, चेकलिस्ट बनाइए। क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मेरे में ये है, क्या मैं ऐसे चलती हूँ, क्या है, बस एक एक करके उसके ऊपर काम कीजिए। हमें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं, लोग आज मॉडल्स को फॉलो करते हैं। हम किसी के साथ जो भी कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि बस अब वो दुनिया में जो मशहूर है, कभी फेसेस बनाते हैं, कभी माथे पे तेवरियां चढ़ाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, यानी ये हमारी एक आदत है, हम इसके ऊपर मजबूर हैं शायद। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इससे एक और चीज़ भी आपके मेरे गौर की है, और वो क्या है कि इन अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती को पसंद करते हैं। और फिर इसमें जो चीज़ें आपको अपने अंदर नहीं मिलती फितरी तौर पे भी, तो आपने उसको इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से, जिस हद से, जिस तरह बेहतर कर सके उसको करना है। तो यहाँ पे रुकेंगे इसलिए कि अब आखिरी टॉपिक कल है, इंशाअल्लाह ताला उसको लेके चलेंगे कि आज तो हमने आपका ज़ाहिर देखा, अपीरेंस देखी, आपकी शख्सियत देखी, लेकिन कल हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके बारे में कि आपका अख्लाक कैसा था और आपकी आदत कैसी थी। ठीक है, जजाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।